पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अर्पा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित।
अर्पा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार में सुनिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपेंद्र राव का व्याख्यान।
आपकी प्रतिभा हमारे विशेषज्ञ, आइए मिलकर नया इतिहास रचें।
प्रिय विद्यार्थियों, हमने मनोवैज्ञानिक परीक्षणों में अमानकीकृत परीक्षणों की चर्चा की, अब हम मानकीकृत परीक्षणों या तकनीकों की चर्चा करेंगे। निर्देशन एवं परामर्श के कार्य में यह निर्देशक या परामर्शदाता व्यक्ति के व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, रुचि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति आदि का पता लगाने हेतु विभिन्न प्रकार के मानकीकृत तकनीकों को प्रयोग में लाता है। ऐसे मनोवैज्ञानिक परीक्षण जिनकी विश्वसनीयता, वैधता एवं मानक निर्धारित होते हैं, मानकीकृत तकनीकों में शामिल किए जाते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसे मानकीकृत मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का विवरण देखेंगे जिसकी सहायता से एक परामर्शदाता व्यक्ति के विभिन्न पक्षों का मापन कर सकता है। इसमें महत्वपूर्ण परीक्षण इस प्रकार हैं, जैसे अभियोग्यता परीक्षण, एप्टीट्यूड टेस्ट। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक मुख्य कारण अभियोग्यता का अंतर होना भी होता है। अभियोग्यता से तात्पर्य किसी विशेष कार्य को करने की किसी व्यक्ति में कितनी और किस स्तर की क्षमता है, या इसके अतिरिक्त उस जन्मजात आंतरिक या स्वाभाविक योग्यता का अनुमान लगाया जाता है जिसका अधिकतम विकास अधिगम या दूसरे अनुभव से संभव हो सकता है। अभियोग्यता का विकास अधिगम अर्थात लर्निंग या फिर प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग से किया जाना संभव है, परंतु एक निश्चित बिंदु के आगे इसका विकास किया जाना संभव नहीं होता। यही कारण है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने के लिए या फिर अध्यापक या नेता या अभिनेता बनने की योग्यता रखता है। मनोविज्ञान में इसी जन्मजात या मानसिक विशिष्ट योग्यता को अभियोग्यता या अभिक्षमता के नाम से जाना जाता है। फ्रीमैन ने अभियोग्यता को परिभाषित करते हुए कहा है कि अभियोग्यता एक योग्यता या विशेषताओं का समूह है जो यह संकेत करता है कि किसी व्यक्ति में किस विशेष ज्ञान, योग्यता या प्रतिक्रियाओं के समूह, जैसे भाषा बोलने की योग्यता, संगीतज्ञ बनने की योग्यता, यांत्रिक कार्य करने की योग्यता का विकास करना है। बिंघम के शब्दों में अभियोग्यता किसी एक व्यक्ति के प्रशिक्षण के उपरांत उसके ज्ञान, दक्षता या प्रतिक्रियाओं को सीखने की योग्यता होती है। अभियोग्यता को मुख्यतः चार प्रकार से बांटा जा सकता है, जैसे विशिष्टता, एकात्म रचना, सीखने की सुविधा या स्थिरता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभियोग्यता एक योग्यता ना होकर निश्चित योग्यताओं के संभावित विकास की भविष्यवाणी करने में सहायक होती है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की अभियोग्यता का मापन कैसे किया जाए। अभियोग्यता के मापन द्वारा व्यक्ति की शक्ति का मापन किया जाता है जिससे निर्धारित क्रियाकलापों में सफलता उपलब्ध की जाती है अथवा उन क्रियाकलापों में निपुणता प्राप्त की जाती है। इस प्रकार हम अभियोग्यता परीक्षण द्वारा किसी व्यक्ति की वर्तमान उपलब्धियों के आधार पर उसके संबंध में अनुमान लगाते हैं कि विशेष क्षेत्र में उचित वातावरण प्रशिक्षण मिलने पर उसे कितनी सफलता मिल सकती है। दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति को कोई वातावरण अच्छा मिले या फिर उसको प्रशिक्षण अच्छे ढंग से प्राप्त हो तो वह उस कार्य में कितना सफल हो सकेगा या उसके विषय में हम भविष्यवाणी करने में भी सक्षम हो पाते हैं। किसी भी क्षेत्र में अभियोग्यता परीक्षण का निर्माण करने के लिए उस विशेष क्षेत्र से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण करके विभिन्न तथ्यों के आधार पर प्रश्नों या कथनों का निर्माण कर लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर शिक्षक संबंधी अभियोग्यता का मापन करने हेतु शिक्षण कौशलों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अभियोग्यता का मापन किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी उस कौशल के मापन करने के लिए उस कौशल से संबंधित प्रशिक्षण या फिर योग्यता का मापन किया जा सकता है। अभियोग्यता परीक्षण के कुछ प्रकार बताए गए हैं, कुछ प्रमुख प्रकारों की चर्चा हम यहाँ करना प्रासंगिक समझते हैं, जैसा सामान्य अभियोग्यता परीक्षण या फिर विशेष अभियोग्यता परीक्षण या विभेदी अभियोग्यता परीक्षण। सामान्य अभियोग्यता परीक्षण क्या है? जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। सामान्य अभियोग्यता परीक्षण वह है जो किसी सामान्य कार्य की क्षमता का मापन करता है। इस वर्ग के अंतर्गत सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण आदि रखे जा सकते हैं। इस प्रकार के परीक्षण की सहायता से किसी व्यक्ति की सामान्य भावी सफलता को बताया जा सकता है। इसका प्रयोग शैक्षिक परिस्थितियों में व्यक्ति के निष्पादन क्षमता, को मापने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभिक्षमता परीक्षण भी इस प्रकार के परीक्षणों को कहा जाता है, जिनमें SAT सेट या PSAT परीक्षण मालाएं सम्मिलित होती हैं। इसके अतिरिक्त विशेष अभियोग्यता परीक्षण, स्पेसिफाइड एप्टीट्यूड टेस्ट, इस प्रकार के परीक्षण में किसी विशेष रोजगार से संबंधित क्षमताओं का परीक्षण करते हैं। इन परीक्षणों का उपयोग उस समय किया जाता है जब किसी विशेष व्यवसाय अथवा किसी प्रकार के अन्य कार्य में व्यक्ति कार्य करने अथवा दक्षता प्राप्त करने की जन्मजात योग्यता का मापन करना हो, अर्थात वह कार्य वो पहले से जानता हो या कर सकता हो, इसके मापन करने के लिए इस प्रकार के विशिष्ट अभियोग्यता परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लिपिक अभियोग्यता परीक्षण, संख्यात्मक योग्यता परीक्षण इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार अभियोग्यता परीक्षण में बताया गया है वो होता है विभेदी अभियोग्यता परीक्षण, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इस प्रकार के अभियोग्यता परीक्षण में अनेक प्रकार के परीक्षणों का एक समूह या बैटरी होती है, अर्थात इस प्रकार के परीक्षण में अनेक उप परीक्षण होते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुशलताओं का मापन किया जाता है। इन परीक्षणों के द्वारा किसी व्यक्ति की विभिन्न विभेद क्षमता या फिर उसकी प्रवीणता या एक्सीलेंसी का मापन भी किया जा सकता है। विभेदी अभियोग्यता परीक्षण के अंतर्गत शाब्दिक तर्क, सांख्यिक योग्यता, गहन तर्क या भाषा व्यवहार आदि का मापन भी किया जा सकता है। मुख्य रूप से कुछ परीक्षण जिनमें विभेदक अभियोग्यता परीक्षण, सामान्य अभियोग्यता परीक्षण, अभिक्षमता सर्वेक्षण, अभिक्षमता वर्गीकरण, इस प्रकार के अभियोग्यता परीक्षण का प्रयोग वर्तमान में किया जाता है। विभेदी अभियोग्यता परीक्षण एक अत्यधिक प्रसिद्ध और बहुतायत में प्रयुक्त किया जाने वाला परीक्षण है। यह 8वीं से 12वीं तक कक्षा के लिए उपयोगी होता है। इसके दो प्रारूप उपलब्ध हैं। प्रत्येक खंड में 8 या 8 उप परीक्षण होते हैं। प्रथम परीक्षण पुस्तिका में 4 परीक्षण होते हैं, जिनमें शाब्दिक तार्किक योग्यता परीक्षण, इसका जो समय सीमा होती वो 30 मिनट हो सकती है। दूसरा संख्यात्मक योग्यता परीक्षण, इसकी भी समय सीमा 30 मिनट है। तीसरा इसमें जो होता है वो होता है अमूर्त तार्किक योग्यता, इसका मापन 25 मिनट तक किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो चौथा चरण होता है उसमें लिप की गति या शुद्धता का मापन किया जाता है, जिसमें 6 से 7 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से ये 4 उप परीक्षण प्रथम भाग में शामिल होते हैं, जिनके प्रशासन में कुल 91 मिनट से लेकर 100 मिनट तक का समय लगता है। द्वितीय जो परीक्षण पुस्तिका में 4 परीक्षण होते हैं वो इस प्रकार है। पहला जो इसमें होता है वो होता है यांत्रिक योग्यता परीक्षण, मैकेनिकल रीजनिंग, इसमें 30 मिनट का समय लगता है। दूसरा होता है स्थानगत संबंध, इसमें 25 से 30 मिनट का समय लग सकता है। तीसरा जो इसमें होता है वर्तनी क्षमता या स्पेलिंग प्रोफिशिएंसी का मापन, इसमें 10 मिनट से ऊपर का समय लगता है। और चौथा जो इसमें क्रम है उसमें भाषा का उपयोग या लैंग्वेज का जो यूज़ है वो उसका मापन किया जाता है, इसमें 20 से 25 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार इसमें भी 4 उप परीक्षण हैं, 2 मेन पार्ट हैं, उसमें फिर 4-4 सब पार्ट हैं। इस प्रकार कुल 85 मिनट का समय पूरे परीक्षण को करने में लगता है। इस विभेदी अभियोग्यता परीक्षण द्वारा किसी भी व्यक्ति या विद्यार्थी के 8 क्षेत्रों में अभियोग्यता का मापन किया जा सकता है। इसके अलावा सृजनात्मकता परीक्षण होता है। सृजनात्मकता का अर्थ किसी नई वस्तु का सृजन करना या समाज में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कार्य या व्यवसाय में किसी न किसी रूप में सृजनात्मकता देखने को मिलती है। जैसे चित्रकार रंगों के माध्यम से मनचाही नवीन कलाकृति बना सकता है, कवि कविता रच सकता है, गीतकार गीत बना सकता है। इस प्रकार व्यक्ति में सृजन की संभावनाएं होती हैं और का विकास भी समय समय पर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। सृजनात्मकता को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने शब्दों में परिभाषित करने का प्रयास किया है। गिलफोर्ड और क्रिस्टेन ने सृजनात्मकता को परिभाषित करते हुए बताया है कि सृजनात्मकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नवीन उत्पत्ति हो एवं यह नवीन उत्पत्ति किसी समस्या के समाधान में सहयोगी हो। उसी प्रकार जेम्स ने अपनी परिभाषा में सृजनात्मकता को बताते हुए बताया है कि सृजनात्मकता अनिवार्य रूप से कोई नई वस्तु का सृजन करता है। तो यहाँ हम परिभाषाओं को ध्यान दें तो हमको समझ में आता है कि नई वस्तु का सृजन हो रहा है या फिर कि मौलिकता का सृजन हो रहा है, और इस सृजन के सहयोग से समाधान करने की क्षमता या समस्या को पहचानने की क्षमता का विकास भी हो रहा है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं, जैसे सृजनात्मक परीक्षण उपयोगी होना चाहिए, समाज में इसकी मान्यता मिलनी चाहिए, यह 2 या अधिक वस्तुओं के संयोग से एक नवीन प्रणाली को विकसित करने वाला होना चाहिए, या इसमें प्रतिभा का विकास होना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जो सृजनात्मकता परीक्षण के मापन के समय एक मनोवैज्ञानिक या निर्देशनकर्ता को ध्यान में रखना पड़ता है। इन तथ्यों के आधार पर व्यक्ति की सृजनात्मक योग्यता का मापन संभव हो सकता है। सृजनात्मकता मापन के लिए बहुत से मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की चर्चा यहाँ करना प्रासंगिक होगा। सृजनात्मकता का पता करने के लिए मानकीकृत सृजनात्मक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए विदेशों में तथा अपने देश में भी विभिन्न परीक्षण उपलब्ध हैं जिनसे सृजनात्मकता का मापन किया जा सकता है। कुछ का वर्णन मैं यहाँ नाम बताना चाहूँगा आपको। जैसे विदेशों में जो निर्मित मानकीकृत परीक्षण हुए हैं जो सृजनात्मकता का मापन करते हैं, उनमें है मिनेसोटा सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, मिनेसोटा टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, गिलफोर्ड का बहुविध चिंतन उपकरण, गिलफोर्ड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स, रिमोट एसोसिएशन टेस्ट, बालक या कॉर्गन के सृजनात्मकता उपकरण, सृजनात्मक योग्यता का एसी परीक्षण, टॉरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, ये कुछ विदेशों में निर्मित परीक्षण हैं। इसी प्रकार कुछ भारत में भी निर्मित सृजनात्मक परीक्षण बनाए गए हैं, उनमें बाकर मेहंदी सृजनात्मक चिंतन परीक्षण, पासी सृजनात्मक परीक्षण जिसको पासी टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी भी कहा जाता है, शर्मा बहुविध उत्पादन परीक्षण, सक्सेना सृजनात्मक परीक्षण, इस प्रकार के कुछ परीक्षण हैं जिनकी सहायता से सृजनात्मक योग्यता का मापन किया जा सकता है। ये आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। जितने भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण की एजेंसियां हैं जो इसका निर्माण करती हैं, उनके माध्यम से ये परीक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण सृजनात्मक परीक्षणों की चर्चा हम थोड़ा सा यहाँ करना चाहेंगे, जिनमें बाकर मेहंदी सृजनात्मक परीक्षण बहुतायत में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी रचना 1973 में डॉक्टर बाकर मेहंदी द्वारा की गई और इसका प्रकाशन नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा द्वारा किया गया। इस परीक्षण में गिलफोर्ड द्वारा बताए गए बहुविध चिंतन के 6 प्राथमिक कारकों में से 4 कारकों प्रवाहमयता, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारीकरण को इसमें सम्मिलित किया गया है। इसमें 4 शाब्दिक और 3 अशाब्दिक उप परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षणों में 4 उप परीक्षण है, जैसे परिणाम सोचो परीक्षण, कंसिक्वेंसी टेस्ट, जैसे निम्न परिस्थितियों में सोचो क्या हो सकता है, जितने विकल्प सोच भी सकते हो, इस प्रकार से इस परीक्षण में पूछने का प्रयास किया जाता है। कुछ प्रश्न इसमें समाहित किए गए हैं, कुछ उदाहरण रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे हम पक्षी की भांति उड़ सकते हैं क्या, या हम यदि पक्षी की भांति उड़ते तो क्या होता, अगर तुम्हारे विद्यालय में पहिए लग जाते तो क्या होता, अगर आदमी भोजन की जरूरत न होती तो क्या होता, इस प्रकार से एक प्रश्न की श्रृंखला है जिसमें काल्पनिक विचारों के आधार पर व्यक्ति की सृजनात्मकता को जानने का प्रयास किया जाता है। दूसरा, इसमें अप्रचलित उपयोग परीक्षण भी है, अनयूजुअल यूजर्स टेस्ट। निम्न में से प्रत्येक पदार्थ को जितने नवीन या असाधारण ढंग से प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे पत्थर का टुकड़ा, लकड़ी की छड़ी या पानी, इस प्रकार से कुछ पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम सृजनात्मक रूप से कर सकते हैं क्या, इसका जानने का प्रयास इस परीक्षण में किया जा सकता है। फिर कुछ नवीन संबंध बनाने का भी इसमें परीक्षण होता है। इसमें निर्धारित 15 मिनट का समय लग सकता है। जैसे संबंधों की आप कल्पना करते हैं, पेड़ तथा घर, कुर्सी तथा सीढ़ी, वायु तथा जल, इस प्रकार से दो परिस्थितियों या दो व्यक्तियों या फिर दो घटनाओं या दो वस्तुओं की तुलना करने का प्रयास या उसके माध्यम से कल्पना करने का इसमें प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्तु विशेष में सुधार, आपके पास एक खिलौना है, सपोज आप सोचिए कि आपके पास एक घोड़ा है खेलने वाला, उसे किस प्रकार उपयोगी या कारगर या फिर उन्नत बनाया जा सकता है। तो इस पूरे परीक्षण में करीब 48 मिनट का समय लगता है। परीक्षण के पहले 15 मिनट में और दूसरे 12 मिनट और तीसरे 15 मिनट और अंतिम 6 मिनट, ऐसा 4 खंडों में से बांटा गया है। परीक्षण द्वारा सृजनात्मकता के 3 कारकों जैसे प्रवाह, लचीलापन और मौलिकता का मापन इसमें करने का प्रयास किया जाता है। इसके अलावा अशाब्दिक परीक्षण या फिर नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी भी बताई गई है। इसमें 3 परीक्षण आते हैं, जैसे ड्रॉ ए फिगर। इस परीक्षण में 2 साधारण रेखीय आकृतियां दी जाती हैं, प्रत्येक आकृति को अंग मानकर अभ्यर्थी को ऐसा चित्र बनाना होता है जो कि अन्य कोई न सोच सके। चित्र बनाने के लिए कागज को किसी प्रकार से भी घुमाया जा सकता है। चित्र में नवीन विचारों को अधिक से अधिक रोचक बनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा जो अशाब्दिक परीक्षण है, उसमें चित्र पूर्ति या पिक्चर कंप्लीशन किया जाता है। इस परीक्षण में अपूर्ण आकृतियां दी जाती हैं, प्रत्येक आकृति को रेखाओं को इस प्रकार पूर्ण करना होता है ताकि उससे एक नवीन चित्र की कल्पना की जा सके या इसमें मौलिकता दिख सके, इस प्रकार का प्रयास किया जाता है। तीसरा, इसमें जो परीक्षण किया जाता है उसमें त्रिभुजाकार या अंडाकार आकृति का कार्य दिया जाता है। इस परीक्षण में 7 त्रिभुजाकार या 7 अंडाकार आकृतियां दी जाती हैं। प्रत्येक आकृति को अंग मानकर नवीन या रोचक चित्र बनाना होता है। प्रत्येक चित्र को अलग अलग विचारों के आधार पर बनाया जाता है। इस परीक्षण के लिए 10 मिनट का समय दिया जाता है। अगर दोनों परीक्षणों का प्रयोग किया जाना हो तो 2 बार में या अलग अलग समय देकर प्रशासित करना चाहिए, जिससे परीक्षार्थी में निरस्ता उत्पन्न न हो और उसके द्वारा किए गए नवीनता या मौलिकता या लचीलेपन की जाँच की जा सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बाकर मेहंदी परीक्षण में कुल 2 परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है और इसकी सहायता से सृजनात्मकता की स्तर का या फिर सृजनात्मक सोच का मापन किया जा सकता है। सृजनात्मकता परीक्षण के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तित्व परीक्षण का भी मापन किया जाता है, जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने में बहुत सहायक सिद्ध हुई हैं। व्यक्तित्व क्या है, इस विषय में प्रत्येक मनोवैज्ञानिक का अपना अपना अलग अलग मत है। अल्पोट के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक संस्थान का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। एक अन्य परिभाषा में आरबी कैटल ने व्यक्तित्व को समझाते हुए बताया है कि व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। इन सभी परिभाषाओं का विश्लेषण करें तो व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतरी एवं बाहरी गुणों का एक ऐसा पुंज है जिसके द्वारा व्यक्ति के वातावरण में व्यवहार प्रदर्शित होता है या वो अपने वातावरण में अपने आप को उन गुणों द्वारा समायोजित करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे किया जाए। व्यक्तित्व के मूल्यांकन से तात्पर्य व्यक्ति में निहित शील गुणों के बारे में पता लगाकर यह निश्चित करना होता है कि वह किस सीमा तक संगठित या विसंगठित। यदि ये संगठित होते हैं तो व्यक्ति का व्यवहार सामान्य होता है, यदि असंगठित होते हैं तो उसका व्यवहार असामान्य होता है। इन गुणों के संगठन में कुछ असामान्यता भी दिख सकती है जो उसके समायोजन को प्रभावित करती है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन को मुख्य रूप से 3 तकनीकों के माध्यम से जानने का प्रयास किया जाता है। इनमें है आत्मनिष्ठ विधियां सब्जेक्टिव मेथड्स, वस्तुनिष्ठ विधियां ऑब्जेक्टिव मेथड्स और प्रक्षेपी प्रविधियां या प्रोजेक्टिव मेथड्स। व्यक्तित्व मापन हेतु आत्मनिष्ठ विधियों में अवलोकन, आत्मकथा, परिस्थिति परीक्षण, साक्षात्कार, जीवन कथा या जीवन वृत्तांत, व्यक्ति इतिहास अर्थात केस हिस्ट्री आदि विधियों का उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु कुछ अनुसूची या प्रश्नावली भी प्रयोग की जाती है, जैसे बेल्स के समायोजन नैदानिक अनुसूची, मिनेसोटा बहुआयामी व्यक्तित्व परीक्षण, एडवर्ड का सव्यक्तिगत अभिव्यक्ति अभिसूची, कैटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर प्रश्नावली। यहाँ कुछ व्यक्तित्व परीक्षणों की चर्चा करना प्रासंगिक होगा, जैसे कैटल का 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली 16 फैक्टर पर्सनैलिटी ऑफ कैटल। इस परीक्षण का निर्माण कैटल ने कारक विश्लेषण फैक्टर एनालिसिस के आधार पर किया है। यह प्रश्नावली न्यूनतम समय में व्यक्तित्व के संपूर्ण विवरण को प्रस्तुत करती है। ये एक व्यापक प्रश्नावली है जो व्यक्तित्व के प्रत्येक कारक पर प्रकाश डालती है। इसका पहला प्रकाशन 1949 में हुआ था। इसके आधार पर के बाद कई सुधार इसमें हुए और इसका नवीनतम प्रकाशन 1993 में किया गया। इसकी भाषा, प्रशासन, अंकन और व्याख्या को सरल बनाने का इसमें प्रयास किया गया है। इसमें व्यक्तित्व कारक या व्यक्तित्व संबंधित 16 कारकों को रखा गया है। कुल इसमें 187 प्रश्नों के द्वारा इन 16 कारकों का मापन करने का प्रयास किया जाता है। ये 16 कारक जैसे हैं प्रेमपूर्ण या हार्दिक व्यवहार, अधिक बुद्धिमान होना, स्थिर होना, दबंग होना, अधीर होना या विशिष्ट व्यक्तित्व का होना, साहसी होना या सौम्यता, संदिग्धता, काल्पनिकता, चतुरता या फिर संदेही या भययुक्त होना, प्रायोगिक होना, आत्मनिर्भर होना या नियंत्रित होना, तनाव या परेशान होना। इस प्रकार से कुल 16 गुणों का मापन इस व्यक्तित्व मापनी की सहायता से किया जाता है। इसी प्रकार से आईजेंक या मोट्सले ने भी एक व्यक्तित्व मापनी का आविष्कार किया और यह अनुसूचित 2 पक्षों न्यूरोटिज्म स्नायु दौर्बल्य और अंतर्मुखी बहिर्मुखी इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन का मापन करती है। बहुतायत में मनोवैज्ञानिकों द्वारा या फिर निर्देशनकर्ताओं द्वारा या फिर परामर्शदाताओं द्वारा इस प्रकार की विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के व्यक्तित्व में सामान्य और असामान्य दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। इस परीक्षण की प्रशासन की कोई सीमा नहीं है, अर्थात उसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, पर भी यथासंभव 3 से 5 मिनट का समय इसके लघु प्रारूप को पूरा करने के लिए लगता है और यदि विस्तार रूप से इसको किया जाए तो 15 से 20 मिनट का इसमें समय लगता है। लघु मापनी में कुल 12 पद हैं व बड़ी मापनी में 48 पद हैं। उत्तर के लिए 3 विकल्प हाँ, तटस्थ या फिर नहीं इस रूप में दिया जा सकता है। इसमें अधिकतम 48 अंक हो सकते हैं। इस प्रकार लघु मापनी में दोनों आयामों का अधिकतम अंक 12-12 है। उन समस्त पदों का जिनका उत्तर हाँ में है 2 अंक प्रदान किए जाते हैं। अर्थात यहाँ बोला जा सकता है कि इस परीक्षण को करने में व्यक्तित्व के जो दो पक्ष हैं, न्यूरोटिज्म और इंट्रोवर्जन एक्सट्रोवर्जन पक्ष का ज्ञान हो सकता है या उनके बारे में पता किया जा सकता है। व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए कुछ प्रक्षेपण तकनीकों का भी प्रयोग यहाँ जानना या उसका उपयोग समझना बहुत प्रासंगिक होगा। प्रक्षेपण तकनीकों से तात्पर्य व्यक्ति अपनी दबी हुई इच्छाओं को किसी परिस्थिति या फिर ऐसी इच्छाएं जिसका सामना व्यक्ति नहीं करना चाहता, जैसे कोई असफलता या चेतन मन में कुछ ऐसे विचार जिनको वह चेतन मन में नहीं लाना चाहता या फिर चेतन रूप से नहीं लाना चाहता, इन परीक्षणों के माध्यम से व्यक्ति के इन गुणों का विकास या इन गुणों का पता लगाया जा सकता है। इन्हें हम प्रक्षेपण परीक्षण कह सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रक्षेपी प्रविधियाँ बताई गई हैं, जिनमें रोशाक, स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालकों का अंतर्बोध परीक्षण जिसे चिल्ड्रन एपरसेप्शन टेस्ट या CAT भी कहा जाता है, शब्द साहचर्य वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या वाक्य पूर्ति परीक्षण सेंटेंस कंप्लीटेशन टेस्ट भी बोलते हैं जिसको, वो उसका उपयोग प्रक्षेप परीक्षण के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त अभिरुचि परीक्षण भी मानकीकृत तकनीकों में बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है, जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरुचि या फिर एप्टीट्यूड या इंटरेस्ट का मापन किया जा सकता है। किसी भी व्यवसाय या कार्यक्षेत्र के चुनाव के लिए व्यक्ति का उस कार्य में रुचि होना अत्यंत आवश्यक होता है। रुचि किसी अनुभव में लिप्त हो जाने तथा उसे जारी रखने की एक प्रवृत्ति है, या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुरूप किसी व्यवसाय या कार्यक्षेत्र को चुनाव करता है तो उस कार्य में सफलता या उस कार्य में सिद्ध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या उसके संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इनमें कुछ प्रमुख रुचि परीक्षण हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग द्वारा निर्मित व्यावसायिक रुचि परीक्षण, हैपनर द्वारा निर्मित व्यावसायिक रुचि परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, कूडर द्वारा निर्मित अभिरुचि आलेख आदि विधियों का प्रयोग हम व्यक्ति की रुचि के मापन के लिए हम करते हैं। अलग अलग समय में या अलग अलग परिस्थिति में इस प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त मानकीकृत परीक्षणों में बुद्धि परीक्षण एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण परीक्षण है, खासकर स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों या फिर किशोर अवस्था के विद्यार्थियों का मापन या बुद्धि का मापन, या फिर ऐसे बच्चे जो सामान्य रूप से जिनका जन्म नहीं हुआ है उनके बुद्धि के मापन के लिए भी बुद्धि मापन का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा या परामर्शदाताओं द्वारा किया जाता है। हम शुरुआती अवस्था में ही या विकास के क्रम में शुरू की अवस्था में ही इस प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग कर बुद्धि का मापन कर सकते हैं और उसे निश्चित दिशा देने का प्रयास इसमें किया जाता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वह सोच सकता है, तर्क कर सकता है, उसमें चिंतन करने की क्षमता होती है, वह नवीन परिस्थितियों में समस्याओं में का हल निकाल सकता है। मनुष्य की ये सभी विशेषताएं उसे पशुओं से भिन्न और श्रेष्ठ साबित करती हैं, परंतु ये सभी योग्यताएं सभी में समान रूप से नहीं होती, किसी किसी में यह भिन्न होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का भी इसमें अंतर पाया जाता है, एक व्यक्ति में अधिक हो सकती है या व्यक्ति में कम भी हो सकती है। कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षणों की चर्चा मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ की है और इसका मापन किस प्रकार से किया जा सकता है इसकी भी चर्चा करना यहाँ प्रासंगिक होगा। जैसे पूर्व में बिना पूर्वकाल या बिना पीरियड में एक परीक्षण बना, बिना पीरियड के बाद एक परीक्षण बना, या बिना के पश्चकाल पोस्ट बिना पीरियड में भी एक परीक्षण बना। अर्थात इसे तीन कालों में डिवाइड करते हुए या वर्गीकृत करते हुए हम समझ सकते हैं। इसमें कुछ प्रमुख परीक्षण जो वर्तमान में उपयोगी होते हैं या लाए जाते हैं उनको अलग अलग प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे प्रशासन के आधार पर व्यक्तिगत परीक्षाएं या सामूहिक परीक्षाएं, परीक्षा के रूप के आधार पर जैसे वर्बल परीक्षाएं या नॉन वर्बल टेस्ट अशाब्दिक परीक्षाएं, कार्य की प्रकृति के आधार पर जैसे कागज कलम परीक्षण पेपर पेंसिल टेस्ट, या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट या क्रियात्मक परीक्षण। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बुद्धि का परीक्षण बहुत ही बहुतायत में होता है या फिर अलग अलग उपयोगिता के आधार पर या अलग अलग आवश्यकता के आधार पर अलग अलग बुद्धि का परीक्षण किया जा सकता है। इनमें कुछ प्रमुख बुद्धि परीक्षण जैसे भाटिया बुद्धि परीक्षण, यह एक निष्पादन बुद्धि परीक्षण है। इस परीक्षण का निर्माण डॉक्टर CH भाटिया द्वारा भारतीय बालकों के बुद्धि मापन के लिए किया गया है। यह परीक्षण शिक्षित और अशिक्षित सभी बालकों की बुद्धि का मापन कर सकता है। इसमें कुल 5 परीक्षण दिए जाते हैं, जिनमें काष्ठ प्रारूप अर्थात लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ना जिसको ब्लॉक डिज़ाइन कहते हैं, अलेक्जेंडर स्थानांतरण परीक्षण जिसमें पास अलॉन्ग टेस्ट भी कहा जाता है, फिगर ड्राइंग टेस्ट, आकृति का चित्रण परीक्षण, तत्काल ध्वनि स्मृति परीक्षण, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और चित्र रचना पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। इस प्रकार से 5 परीक्षण का समुचित रूप से परीक्षण किया जाता है और उसके आधार पर या उससे उसमें मिलने वाले प्राप्तांकों के आधार पर एक किशोर अवस्था के बालक की बुद्धि का मापन किया जाता है और उसके गुणांक के आधार पर उसके बुद्धि का स्तर बताया जा सकता है। बुद्धि लब्धि को बुद्धि लब्धि गुणांक के आधार पर पहचाना जाता है, या इसे हम सरल शब्दों में कहें या बोलचाल की भाषा में कहें तो इसे IQ भी कहा जाता है। इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है? क्रोनोलॉजिकल एज अपॉन मेंटल एज इंटू 100, अर्थात जो उसकी वास्तविक आयु है और जो उसकी मानसिक आयु है उन दोनों का अंतर, और उसको यदि हम 100 से गुणा कर देते हैं तो जो स्कोर आएगा उससे उसकी बुद्धि लब्धि का मापन हम कर सकते हैं। इसमें रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स विधियाँ भी उपयोग की जाती हैं। ये कुछ पुरानी टेक्निक्स हैं, इनका प्रयोग आज बहुतायत में नहीं होता, पर ये बहुत ही प्रभावशाली पद्धतियाँ बुद्धि परीक्षण के रूप में प्रयोग की जाती रही हैं। निर्देशन या परामर्श के क्षेत्र में भी मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बुद्धि लब्धि, अभिक्षमता, रुचि, व्यावसायिक रुचि, या फिर जैसे वोकेशनल काउंसलिंग हम कर रहे हैं तो किसी विशेष क्षेत्र में व्यक्ति कितनी अभिक्षमता रखता है, अभिरुचि रखता है, इन परीक्षणों के माध्यम से हम कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षण निर्देशन के क्षेत्र में हो या परामर्श के क्षेत्र में हो या मनोवैज्ञानिक उपचार के क्षेत्रों में हो, किसी भी रूप में यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है और इसके आधार पर हम निदान अर्थात समस्या को समझना और निदान अर्थात उपचार करने का माध्यम भी इसके द्वारा किया जा सकता है या इसके द्वारा समझा जा सकता है। तो निश्चित रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की जानकारी आज आप सभी को प्राप्त हुई होगी। इन परीक्षणों का प्रयोग आप अपने प्रयोग या परीक्षण के दौरान करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इसको प्रशासन किया जाए, इसका अंकन किया जाए, इसकी व्याख्या किया जाए और दैनिक जीवन में किस प्रकार से इसके प्रयोग से या इसकी सहायता से व्यक्तियों की मदद की जा सकती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य